Beyond Cooking with Chef Rakesh Sethi.
A Pod One Production.
सभी लिस्टर्स को राकेश सेठी का स्वाद भरा नमस्कार। बियॉन्ड कुकिंग विद राकेश सेठी में हम बातें करेंगे फूड और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कुछ खास लोगों से और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अगले एपिसोड में तो मैं सवाल करूंगा अपने गेस्ट से, लेकिन क्योंकि पहला एपिसोड मेरी ही जर्नी के बारे में है, इसलिए मुझसे सवाल करने के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ अपने गेस्ट आरजे को।
थैंक यू सो मच शेफ, इट इज इंडीड अ प्लेजर कि आज मेरे जरिए आपकी ऑडियंस आपकी जर्नी के बारे में जानेगी, विच इज बियॉन्ड कुकिंग। वेल, वी ऑल नो दैट वन ऑफ द फर्स्ट शेफ्स ऑन इंडियन टेलीविजन, शेफ राकेश सेठी, सही मायनों में एक हाउस होल्ड नेम है एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। वेल शेफ, मुझे ऐसा कहना चाहिए, आपका आपके पॉडकास्ट शो पे स्वागत है और मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट रोलिंग।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
शेफ राकेश सेठी, अ वेरी वेल नोन फेस ऑन टीवी, अ वेरी वेल नोन वॉइस ऑन रेडियो शोज। शेफ, न सिर्फ आप टीवी और रेडियो में फूड शोज में लेकर एक ट्रेंड सेटर रहे हैं, बट विद योर पॉडकास्ट शो बियॉन्ड कुकिंग आप एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं। बट व्हाई एग्जैक्टली बियॉन्ड कुकिंग?
अपने 40 साल के करियर में आई केम अक्रॉस मेनी ग्रेट प्रोफेशनल शेफ्स, होम शेफ्स, फूडीज एंड हॉस्पिटैलिटी लीडर्स, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस क्षेत्र में अपना एक नाम बनाया है, एक मुकाम हासिल किया है। बियॉन्ड कुकिंग विद शेफ राकेश सेठी में हम बातें करेंगे फूड और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कुछ ऐसे ही खास लोगों से और जानेंगे उनकी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में।
दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट शेफ। पॉडकास्ट के जरिए न सिर्फ लोग आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, बल्कि ऐसे कई और नामी चेहरे और शेफ्स फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, फूड ब्लॉगर्स जो आज एक यंग अचीवर हैं या फिर एस्टैब्लिश्ड नेम है, एंड आई थिंक इट कैन इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। तो आपकी शुरुआत से बात करते हैं, तो ये खाना बनाने का शौक क्या आपको बचपन से था?
उम्र बचपन की और बात बचपन की, चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने बचपन के बारे में। हम लोग तीन भाई बहन हैं और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरे फादर, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे, इसलिए हमारी जो स्कूलिंग है वो ज़्यादातर एयरफोर्स स्कूल या फिर सेंट्रल स्कूल में हुई थी। फादर एयरफोर्स में थे, इसलिए हर 3 से 4 साल के बाद उनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी और हर 3-4 साल बाद हम लोग थे एक नए शहर में, नया स्कूल, नए दोस्त। अभी हम एक जगह सेटल भी नहीं हो पाते थे कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी और हमें साथ ही चलना पड़ता था।
Well, I think this kind of upbringing added a lot in your personality and of course in your profession as well. तो ये फिर कहना गलत नहीं होगा that you were basically living out of a suitcase. कोई एक favorite memory इस दौरान की?
जी हाँ, और इसमें भी एक अच्छी बात थी। कहते हैं ना, traveling makes you a better person. You learn a lot. नया शहर, नई भाषा, नई cuisine, नया culture, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। ज़्यादातर हम लोग कंटोनमेंट एरियाज में ही रहते थे। एयरफोर्स क्वार्टर्स में शॉपिंग के लिए कैंटीन का ही एक मंथली ट्रिप लगता था, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक रोमांचक शॉपिंग ट्रिप होता था। लाइफ वॉज वेरी डिसिप्लिन एंड सिंपल, ज़रूरतें कम थी ना और रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे।
शेफ, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, तो फिर आपके फादर एयरफोर्स में थे, आपने कभी इंडियन एयरफोर्स में या डिफेंस सर्विसेज में जाने का नहीं सोचा? और शेफ, जो कि बहुत ही अलग प्रोफेशन है, स्पेशली इन द टाइम्स यू आर कमिंग फ्रॉम, ये कैसे हुआ?
मैं हमेशा से ही डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता था, फिर वो चाहे एयरफोर्स होती या आर्मी। बट किस्मत की बात देखिए, आई केम इनटू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। जब हम छोटे होते थे तो मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों दोपहर के समय जब हमारी माँ थोड़ा सा पावर नैप ले रही होती थी, तो हम किचन में घुस जाते थे और कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाया करते थे, यही सोच कर कि माँ को पता नहीं चलेगा। पर माँ तो माँ होती है, शी वुड नो कि हमने कुछ ना कुछ शरारत करी है। बस थोड़ी सी डांट पड़ती थी, पर जो भी मैं बनाता था वो सबको पसंद ज़रूर आता था। तो 12th पास करने के बाद मेरे बड़े भाई, जो इनका नाम है विजय सेठी, वो होटल मैनेजमेंट कर रहे थे फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा न्यू दिल्ली। तो ही सजेस्टेड मी कि राकेश, व्हाई डोंट यू कन्वर्ट योर हॉबी इनटू अ प्रोफेशन, एंड ही गॉट मी एनरोल्ड इनटू IHM पूसा और वहाँ मैंने कुकरी का डिप्लोमा किया एंड द कलिनरी जर्नी बिगेन From that time.
Well, so we can thank your brother ki jinki wajah se aaj hame राकेश सेठी के साथ शेफ राकेश सेठी मिले. बट यू नो इफ वी रोल बैक लाइक आज से 40 साल पहले टू स्टार्ट एज अ शेफ एंड वर्क इन अ होटल, वो कैसा एक्सपीरियंस था?
आजकल तो अपने नाम के आगे हर कोई शेफ का टाइटल लगा लेता है, पर सच मानिए बहुत मेहनत लगती है एक शेफ बनने में. आई हैव ग्रोन अप थ्रू रैंक्स. मेरी शुरुआत तो हुई थी एज ए कुक, जिसको हम होटल लाइन में कॉमीज कहते हैं. ये एक फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है, इसे हम कॉमीज कहते हैं. और देन आई क्लाइंब द लैडर एंड धीरे धीरे ग्रो होता गया और टुडे आई एम कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव शेफ फॉर रेडिसन होटल ग्रुप, जो कि किचन का एक हाईएस्ट रैंक होता है. और आई ओवरसी अराउंड 105 होटल्स नाउ.
सुनने में वाव लगता है, लेकिन शेफ मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी में ये जर्नी काफी चैलेंजिंग रही होगी. स्पेशली शेफ एक होटल में काम करना, फिर उसके बाद टीवी इंडस्ट्री, रेडियो शोज एंड एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज नॉट जस्ट अ शेफ बट अ ब्रांड नेम. कुछ खास चैलेंजेस के बारे में बताइए विच कैन इंस्पायर द कमिंग अप शेफ्स और द पीपल इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री.
प्रोफेशनल किचन में काम करना तो कभी भी इजी नहीं होता है, यू नो इट नीड्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. होटल में तो यू गेट यूज टू इट, यू नो खासतौर पर अर्ली डेज में लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कट्स, बर्न्स, वूंड्स, ये सब तो सीखने का हिस्सा होते हैं. यू नो शुरू में सबके साथ होता है ये. उस समय तो ना गूगल था और ना ही मोबाइल फ़ोन थे. जो भी सीखना होता था वो अपने सीनियर शेफ से, जिन्हें हम उस्ताद कहते थे, तो उनसे ही हमको सीखने को मिलता था. उनकी रेसिपीज़ को सीखने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंटेड रेसिपीज़ नहीं होती थी उन दिनों में, तो देख देख के ही सीखते थे हम काम को. और मार्केट में कोई ऐसी खास बुक्स भी नहीं मिलती थी इतनी आसानी से, तो बिल्कुल कोई अच्छी बुक मिलती ही नहीं थी. तो क्या करते थे हम, संडे के दिन दरियागंज में बाजार लगता था और वहाँ जाके हम लोग बुक्स छांटते थे. कोई कुकिंग की बुक्स मिल जाती थी तो उसको लाके फोटोकॉपी करके उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करके रख लेते थे. तो इस तरह से हम सीखते थे रेसिपी, देख देख के खाना बनाते थे कुछ अगर नया बनाना होता था. और ड्यूटी के बाद रात को अगर आप 1 या 2 बजे भी घर लौटे हो, तो अगले दिन फिर अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी तो आपको सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचना होता था. तो डबल ड्यूटी भी कई बार लग जाती थी, हफ्ते में 2-3 बार तो ऐसा होता था कि आपने मॉर्निंग ड्यूटी भी करी है, इवनिंग भी करी है, तो रात देर हो ही जाती थी. और इंग्रेडिएंट जो आजकल इतनी आसानी से बाज़ारों में मिल जाते हैं, तब नहीं मिलते थे. अब बात कर लो ये येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, 80s में तो ये बहुत मुश्किल चीज़ थी, यानी इम्पोर्टेड आइटम्स तो यहाँ थे ही नहीं. फिर 1982 में कहीं जाके जब एशियन गेम्स हुई, बहुत सारे नए होटल खुले, एक्सपैट्रिएट शेफ्स इंडिया आए, तो वो अपने साथ, क्योंकि उनको वहाँ का खाना बनाना होता था, अपने साथ वो लेकर आए कुछ इंग्रेडिएंट्स, रास्ता खुला और बाज़ार में ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे अब आसानी से मिलने लगी हैं. आजकल तो छोटे छोटे शहरों में, मंडियों में, सब जगह ये सामान मिल जाता है, लेकिन वो एक टाइम था जब इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स तो खासतौर पे बिल्कुल मिलते ही नहीं थे आसानी से.
दैट श्योरली इंस्टिल्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड. लेकिन ये टीवी का जो आपका सफ़र है, जिसने एक तरह से आपकी ज़िंदगी को एक नया रुख दिया, आपको एक नई पहचान दी, तो टेलीविजन इंडस्ट्री में एक कुकरी शो होस्ट करने के बारे में कुछ बताइए.
इट वाज ईयर 2000. मैं दिल्ली के एक 5-star होटल में काम करता था. वहाँ पर स्टार प्लस चैनल की तरफ से एक प्रोडक्शन हाउस ने अप्रोच किया और कहा कि हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं फॉर एन अपकमिंग कुकरी शो. उन्होंने पहले भी कई शेफ्स पैन इंडिया शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए थे. फाइनली मुझे सेलेक्ट किया और मेरा पहला कुकरी शो मिर्च मसाला शुरू हुआ ईयर 2000 में, जो लगभग 12 साल तक टेलीकास्ट भी हुआ. इट वॉज़ ए हिट शो, बहुत चला ये शो और बहुत पॉपुलर था, जिसके कारण ये जो टैग है ना सेलिब्रिटी शेफ का, ये टैग मुझे मिला एंड आई बिकेम ए हाउस होल्ड नेम ओवरनाइट. तब से अब तक मैंने कई कुकरी शोज़ किए हैं अलग अलग चैनल्स के ऊपर और रेडियो शोज़ भी किए हैं, और मेरे टीवी करियर को अब लगभग 20 साल हो चुके हैं.
चलिए तो फिर आप ही के साथ एक रैपिड फायर हो जाए विदाउट द रियल फायर, बट आई एम श्योर ऑल योर आंसर्स विल ऐड फायर टू इट. यू हैव टू बी रियली क्विक. क्वेश्चन नंबर 1, आपकी फेवरेट डिश या फिर फूड?
फेवरेट डिश, वैसे तो मेरी बहुत सारी फेवरेट डिश हैं, लेकिन बिकॉज़ आई हैव टू गिव वन आंसर, तो राजमा चावल.
ओके, माँ के हाथ का खाना या फिर वाइफ के हाथ का खाना?
ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने डाल दिया है कि माँ के हाथ का या वाइफ के हाथ का. देखिए मुझे वैसे तो शाम को घर जाना है, बट आई विल स्टिल बी ऑनेस्ट, माँ के हाथ का खाना.
इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, वो कौन हो सकते हैं पर्सनालिटी और एनी इंडिविजुअल जिनके लिए आप खाना बनाना चाहेंगे, और वो कौन सी डिश होगी?
बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं बनाना चाहता हूँ कोई मनपसंद डिश, बट यू नो आई एम इम्प्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और उनके लिए मैं एक फ्यूजन डिश बनाऊंगा, केसरी फिरनी इन पावलोवा। तो ऑस्ट्रेलियन पावलोवा में अपनी केसरी फिरनी भर के मैं उनके लिए बनाऊंगा।
अगर कहें कि किचन एक मैदानी जंग है, तो यहाँ पे कभी आपको कोई कुकिंग स्कार्स लगे हैं, यानी कि कोई चोट वगैरह या फिर हाथ कट गया हो?
बहुत चोट लगी हैं, लेकिन छोटी छोटी लगती रही हैं। एक स्कार है मेरे लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के ऊपर चाकू से काटते समय, सो देयर इज अ कट मार्क देयर।
कॉमन मिस्टेक्स दैट यू सी अ लॉट ऑफ बिगनर्स डूइंग नाउडेज?
देखिए, बिजनेस तो बहुत मिस्टेक करते हैं और ये उनका टाइम है गलतियां करने का, बट मैंने जो आम तौर पर देखा है, मैं उसको समराइज करूं तो हरी वरी एंड करी, ये बहुत जल्दबाजी करते हैं ना जो हर चीज़ में, और चिंता बहुत करते हैं कि मेरा कब क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनको पीछे ले जाती हैं। दे शुड नॉट वरी, दे शुड हैव यू नो सम, जिसे कहते हैं सब्र होना चाहिए भाई, सब कुछ ठीक होता रहेगा।
अच्छा, वैसे इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन ये जो टीवी सेट पे आप एक इतना लजीज खाना बनाते हैं, एक्चुअली में इसको खाता कौन है?
शूटिंग के बाद हम इंश्योर करते हैं कि नथिंग गोज वेस्ट, यू नो, और जितना भी सामान है वो यूटिलाइज हो जाए। जो खाना बनता है उसको ऑफ कोर्स जो प्रोडक्शन टीम है, दे ऑल टेस्ट इट और एंजॉय इट, खाना वेस्ट नहीं होने देते।
यू नो व्हाई आई नो दैट शेफ, ये बात मुझे इसलिए पता थी बिकॉज़ आई हैव बीन अ होस्ट ऑफ अ किचन शो, और उसके बाद हमेशा मुझे खाना खाने को मिलता था। ओके, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर करियर अगर एक चूज करना हो तो?
देखिए, इतने लंबे करियर में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे रहे हैं जो बेस्ट कहला सकते हैं और यादगार हैं। इसमें मैं आपसे कहूँगा कि मैं एक नहीं दो आंसर देना चाहता हूँ। एक तो जब मुझे 2015 में गोल्डन हैट अवार्ड मिला था फ्रॉम इंडियन कलिनरी फोरम, दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट मोमेंट। और दूसरा था जब मुझे मौका मिला था प्रेजिडेंट एस्टेट में हाउस होल्ड सेक्शन में काम करने के लिए राष्ट्रपति जी के लिए, तो दैट वाज अनदर बेस्ट मोमेंट ऑफ माय करियर।
इतने सारे गोल्डन मोमेंट्स में आई एम श्योर कुकिंग फॉर आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट वुड हैव बीन अ रियल ऑनर, लेकिन क्या रिसेंटली आपने किसी खास शख्सियत के लिए, किसी वीवीआईपी के लिए या सेलिब्रिटी के लिए कुकिंग की हो?
देखिए, सेलिब्रिटीज और वीआईपीज के लिए खाना बनाने का मौका तो पहले भी मिलता था और अब भी मिलता रहता है। जब हम टीवी में शो करते थे तो उस चैनल के जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस होती थी वो सब मेरे कुकिंग शो पे आए हुए हैं और उनके साथ मैंने खाना बनाया हुआ है। होटल में भी वीआईपी इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और वीआईपीज़ आते रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी आए हुए हैं, तो इन सब लोगों के लिए भी जो खाना बना है वो मेरी देख रेख में ही बनता है होटल्स के अंदर, रेडिसन रूल के अंदर। और क्रिकेट टीम में अगर आप बात करें तो हमने इंडियन क्रिकेट टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए खाना बनाया, जो उनको पसंद है उनकी स्पेशल चॉइस के ऊपर हमने वो खाना बनाया, जैसे कि विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा और रवि शास्त्री, इन सब के लिए भी हमने खाना बनाया है, विच वॉज वंडरफुल कुकिंग फॉर ऑल दिस क्रिकेट स्टार्स।
ओके, दिस क्वेश्चन यू कैन से इज माई पर्सनल क्वेश्चन। इतने टाइम तक टीवी और रेडियो में बने रहने के बाद आप कुछ टाइम के लिए गायब से हो गए, क्यों?
मिर्च मसाला, टी टाइम विद राकेश सेठी, रसोई की रानी जैसे टीवी शोज करने के बाद मैं 2013 में होटल इंडस्ट्री में वापस आ गया था। फिर फैंस की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, शेफ राकेश सेठी, जहाँ पर हम अपने फैंस के साथ मिलकर कुकिंग टाइम को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं और खाने से जुड़ी हुई ढेरों बातें भी करते हैं। और यूट्यूब के अलावा तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर आई एम अवेलेबल, मेरा यूज़र नेम है शेफ राकेश सेठी।
Well, chef, with the social media in trend, but you were the trendsetter in TV shows. अब आज से दो दशक पहले जब टीवी शोज किया करते थे तो तब के कुकिंग शोज में और आज के जो कुकिंग शोज या फिर रेसिपी दिखाने का स्टाइल है, उसमें क्या फर्क लगता है आपको?
बहुत फर्क आ गया है। रेसिपीज बहुत इलेबरेट होती थी पहले और छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मान लीजिए हम दाल बना रहे हैं तो इतने ग्राम दाल में इतना पानी डालिए, यानी कि हर चीज़ बतानी पड़ती थी, दाल कितनी है, उसमें पानी कितना डलेगा, ये भी बताना पड़ता था और लोग पूछते भी थे हमसे। रेसिपीज की जो लेंथ होती थी वो 5 मिनट से लेके 10-12 मिनट तक की होती थी और इसके बाद उसका एक रिपीट भी आता था, तो रेसिपी काफ़ी लंबी हो जाती थी और लोग देखते भी थे। और अब तो वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी होती जा रही है और ना ही कोई लंबी रेसिपी बनाना चाहता है किचन में खड़े होकर और ना ही कोई लंबी रेसिपी को देखना चाहता है। अब तो वीडियोस का, रेसिपी का जो फॉर्मेट है वो छोटा होता जा रहा है और कैसे दिखाते हैं आप, जल्दी से सब कुछ टक 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 सब डाला, खाना तैयार हो गया, बस इतनी जल्दी होता है। ये अलग बात है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग टाइमिंग चलते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो पहले के कुकिंग शोज होते थे वो नॉलेज शेयरिंग होते थे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होते थे, और आजकल के जो कुकिंग बेस्ड शोज हैं वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट बेस्ड होते जा रहे हैं।
काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं हर इंडस्ट्री में, स्पेशली आज जहाँ पर सारे फॉर्मेट बहुत ही शॉर्ट हो गए हैं, ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत शॉर्ट हो गया है। लेकिन ऐसे में द गुड पार्ट इज अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स इन द फूड इंडस्ट्री आर इवॉल्विंग, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर ऑल्सो ट्राइंग देयर हैंड्स ऑन फूड शोज एंड कुकरी शोज। ऐसे में कोई रीसेंट फूड क्रिएटर हो या फिर कोई सेलेब हो जिनकी बनाई हुई रेसिपी आपने देखी हो, काफ़ी आपको अच्छी लगी हो?
जी हाँ, ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही इम्प्रेसिव काम कर रहे हैं, और काफ़ी यंग बडिंग शेफ्स हैं, कुछ होम शेफ्स हैं, पैशनेट फूडीज हैं जो अच्छा खाना बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपीज जो घर का खाना होता है वो बनाकर दिखा रहे हैं। और देखिए, सोशल मीडिया ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और जो टैलेंटेड लोग थे उन्होंने अपना टैलेंट शोकेस किया और सामने आ रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब।
This may not be the last part, but one advice that you would like to give to the young or the budding chefs, या फिर जो hospitality industry में, food industry में अपना career pursue करना चाहते हैं।
ये देखिए, budding chefs को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि have a right attitude। एक कहावत है ना, it is one's attitude and not aptitude that will decide their altitude। I always encourage budding chefs, home chefs, मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि आप आगे आइए, अच्छा खाना बनाइए, हमारी जो कलिनरी हेरिटेज है इसको आगे लेकर जाना है। सो ये रेसिपीज हैव टू बी पास्ड अपॉन फ्रॉम मदर टू डॉटर और फ्रॉम सीनियर शेफ्स टू जूनियर शेफ्स। हम इनको सिखाएंगे तभी तो ये हमारे फूड कल्चर को आगे लेकर जाएंगे। तो आई ऑलवेज वांट कि ये आगे आएं घर में, ना केवल लड़कियां बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि लड़के भी आगे आएं और घर में खाना बनाने का जो काम है उसमें हाथ बटाएं वो। और जो हमारे बडिंग शेफ्स हैं जो इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं, मैं उनको तो एक ही बात कहूंगा, कैरी ऑन कुकिंग।
वेल, इस जायके के सफर को इससे पहले कि हम फुल स्टॉप लगाएं, मैं चाहूंगी कि आपके 40 साल के यानी कि 4 दशक के इस जायके भरे, स्वाद भरे सफर में से आप कुछ 3 टेकअवेज जो हमें देना चाहेंगे।
देखिए, 40 साल के मेरे करियर में लर्निंग्स तो बहुत सारी हैं, अगर मैं उनको समराइज करूँ तो 3 P's में मैं उनको समराइज कर सकता हूँ। पहला है पेशेंस। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है परसिवरेंस, और तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतनी करो कि आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी कर सको। यू नो, जब तक आपका सही समय और अपॉर्चुनिटी ना आ जाए तब तक आपको लगे रहना है, और जो लोग आपसे आगे जा चुके हैं उनको देख के हमें कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस बात को मैं एक शेर के रूप में कहता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा तो दौर आएगा, तो वेट फॉर योर राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी।
यहाँ पर ये एंडिंग नहीं है, ये तो शुरुआत है, शुरुआत है उस सफर की जो कि आगे शेफ राकेश सेठी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो शेफ, आई एम ट्रांसफरिंग द टॉर्च टू यू एंड यू बी द बेयरर ऑफ दिस एंड क्रिएट अनदर ट्रेंड इन द पॉडकास्ट इंडस्ट्री विद योर पॉडकास्ट बियॉन्ड कुकिंग। ओवर टू यू शेफ।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू बियॉन्ड कुकिंग विद शेफ राकेश सेठी। मेरे पॉडकास्ट को जरूर फॉलो करें। अगले एपिसोड में मैं एक और हस्ती को लेकर आऊंगा और उनसे सुनेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तब तक के लिए राकेश सेठी का स्वाद भरा नमस्कार।